ज्ञानं जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितांगेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाभ्यैर्गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। अङ्गश्यामलिं चटारविरमितो मण्डीतकेन्दीवरं जड्डं जागुडरोच संविदधतं पट्टम्बरश्चिया निदारण्यनिवासिनं हृदिनसत्तामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेताम्। प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज और प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी के पावन चरित्र के संबंध में दो एक वक्ताओं ने केवल पुष्पांजलि अर्पित की। अभी मैं और भी कुछ वक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि वे लोग परम पूज्यपाद बामन महाराज जी के पावन चरित्र से वर्णन करके उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज जी पहले कुछ बोले ठीक है बोलो तो तात्पर्य सभी लोग 10 मिनट से 15 इसे नहीं अधिक नहीं कारण बहुत लोग हैं।
आदेश दिया जब मैं पहले मंड में आया देखता हूँ कुछ लोग मंड में आके कुछ जगह चले जाते हैं, तो तुमने पूछा
बंगला सही बोलो
तुम्हारे जीएस कैंटू जीएस को इसलाम तुम्हारा अनेक मांगे आसे की जगह चले जाए थे ना कहाँ जो बोल रहे हैं देखो तुम्हारे छोटे अच्छा गॉड को जब बोले आपने तब बीते बारे कहना जाए तब क्या है हम बोल रहे हैं ये हनुमान उन्हें बांदर पुरे से थे आज जा रहे थे बांदर खिला रखा करो बांदर दोनों बीते क्या है बोलो सिर्फ जाने और सुप्रीति से सेवा मारी देखे आवाज चले जाए तुमने बोल रहे हैं किसने गिरी खा किसने गिरी खा कोई किया वाली कोई सिखाया कोई उखाड़ा गिरी दर का कोई सिखाया कोई किया वाली क्या तुमको सीता ना तो मैंने क्या चली सही कौन सा भगवान बेटिया की चलोगी मैं पूछा हम जिस तरह के तापो जबी उन्होंने बोले देखो जब हम भगवान रामचंद्र बनवन को चले लक्ष्मण के सोच से लगा है हम सुषेण पर तो हमला निये लें सुषेण पर को बोल लें जे रात्रि मध्य जो भी को गंगा बादल पर्वत रहे के जो भी को के सर्व कारणी नृत्य संजीवनी शक्ति संचार है कि अस्थि संचार है नहीं एक चार प्रकार जो भी को के हैं तेरे एक ही लोग सोचा ये बोले हम पाचा तो पानी कि तो सूर्य जब यहाँ पे पाचा तो उपाय नहीं हनुमान ने क्या क्या कहने के लिए ये भी की कर लें रावण की पता रोचक था समस्त पहाड़ समान जोर में जोर से देखे पूरा पर्वत के ऊंचे नहीं लें लेकिन किसी ने उठा दी इधर का तब हनुमान ने नहीं लें आ सीता को सुना पड़ा जन हनुमान की कर लें एक आवेदन ऐसे राम हो गए लंका के लें तो उन्हीं समुद्र बंधन कर लें गिरी में नहीं लें आ आप बोलें कि कोई सिखाया नहीं अर्थात जब हम भगवान रामचंद्र बाणी बात करें तो उन्हें लक्ष्मण का बाणी ने नीति शिक्षा और जन्म ने नीति शिक्षा दिए थे और कोई किया वाली सुप्रीति भगवान रामचंद्र संग मित्रता स्थापन कर थे और जरा डहरिया जो बांदर के लिए खड़ा रखा रास्ता रास्ता है बोलते भगवान और एक और नाम लिया टांगा पीटे तब बोलते हो हे भगवान আমি তো কোনসে এসেছি আমি এমন কি কাজ করেছি যে দেখি আমার গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আছে সেটা তো মাঠে আসলেই যে সব অটোবাসী হয়ে যাবে তার কোনো গ্যারান্টি নাই কেননা যার জন্য উপর যেমন সংস্কার এবং সুস্থিতি সেই হিসাবে তার বদলে উন্নতি হয় এবং সে মাঠে অবস্থান করতে পারে আরেকটি জিজ্ঞেস করা তিনি বললেন যে ভগবানের অনেক অনেক সুখ অবস্থা করতে মাঠে Thank you. বিবৃতি কেউ দেখেন নাই, দোষ আমারই ছিল। তবে কি হয়েছে, এখন কি এসেছেন গুরু মহারাজ শেষম থেকে এখন ফিরে এসেছেন,
আনন্দ করে সাক্ষাৎ জ্ঞাপন করা। তারপর উপস্থিত
श्री सन्यासी वृंद मातृ वृंद पूज्य सज्जन वृंद श्री के चरण कमल में मेरा दशरथ प्रभु को प्रणाम स्वीकार करें। और जिस पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हैं यह भी श्री महाराज का यह देखिए जिस ग्रह महोत्सव हम लोग प्रातः काल से मना रहे हैं विवाह और उत्सव आनंद उत्सव दोनों एक विपरीत विपरीत शब्द एक विवाह और एक आनंद कैसे हो सकता है तथा जगत की परिभाषा किसी प्रकार की है जहां पर गुरु विष्णु के स्मरण गुरु विष्णु के कारण उन लोग अभिमत जीवन चरित्र तथा और आज लोग श्रवण करते और इसी साथ ही साथ उनके लिए हम लोग कुछ विवाह प्रकट कर रहे श्री वसुदेव अपने भाषण में यह बताया केवल बच्चों के आह्वान अपायन करने चले जाए खराब करने चले जाए तो हम लोग कहां गुरुदेव के लिए उनकी स्मृति उनकी विधि कैसे करेंगे इसलिए जितने कम हो सके बची प्रभाव किंतु अंतर प्रभाव उनके लिए आज हम लोग विवाह भाव को स्मरण करें विवाह भाव को प्रकट करें एक विवाह किसके हृदय में भी होगी श्री गुरुदेव सुंदर भाषण में उन्होंने बताया जी विवाह में जितने विवाह गुरु पात्र के साथ सुंदर ज्ञान प्राप्त किया ले सकते हैं। आज गुरु बाबा उनके प्रति है कुछ नहीं है, बात तो में क्या क्या हो, जैसे हमारे कुछ बात तो हमारा जी कह रहे थे साधु का तो बहुत दूर की बात है, कम से कम गुरुदेव इधर इधर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, साधु बनने की तो बहुत दूर की बात है, कहाँ चलूंगा मैं, और क्या मेरे बाप को छोड़ा सकते, साधु होने की तो बहुत दूर की हमारे दूर है, कम से कम पशु से मुझे मनुष्य बना दे तो इतना ही मेरे जीवन सफल बन जाता है। उनके साथ कैसे
तो
हो गया,
स्वरूप दामोदर के प्रति प्रीति थी, तो रूप गोस्वामी चले जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी? गिरिराज गोवर्धन अजगर के समान दिखने, सारा गोष्ठ प्रत शून्य आयतम शून्य दिखने लगा, और राधाकुंड श्याम कुंड व्याघ्र के मुख के समान में भयंकर दिखने लगे। उन्होंने जीवा पुरस्य में इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए गुरु के चरणों में जिसका जितना अनुराग होगा उतना ही उसके हृदय में गुरु के प्रति विरह है, और यह विरह जिसके हृदय में होगा उसकी गुरु भक्ति को उन्नत समझो और वह जल्दी ही से भगवान के चरणों की कृपा पाओ। गुरु कृपा के बिना नहीं होगा। मैं पूज्यपाद बामन महाराज जी और पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी से के साथ में 60 से अधिक वर्ष तक रहा। विभिन्न प्रकार से हम लोगों का परस्पर संपर्क था, एक दूसरे को बहुत से निकट से देखने का सुयोग मिला। कैसे वो लोग गुरु सेवा करते हैं ये भी निकट से देखने को समय मिला। गुरु महाराज जी के लिए बामन महाराज अपने प्राणों को हथेली में ले करके काम करते थे। गुरु महाराज जी बामन महाराज जी की सेवा से अपने को ऋणी समझते थे, इसलिए जब कभी बीमार हुए यहां उसमें गया प्रेस में कैसे विरह में रोने लगे, गुरु महाराज जी रोने लगे। जो गुरु अपने शिष्य के लिए रोता है तो समझो जी कितना उसके हृदय में। मैंने त्रिविक्रम महाराज जी को देखा, बामन महाराज जी को और हमको कोई दायित्वपूर्ण काम नहीं देते थे। यदि कोई दायित्वपूर्ण काम होता तो त्रिविक्रम महाराज को देते, और त्रिविक्रम महाराज जी सहज ही वो नहीं लेते थे, तरह से तर्क वितर्क करके तब लेते थे, और जिस काम को लेते थे उसको पूर्ण करते थे। इसलिए गुरु महाराज जी का हमारे बामन महाराज जी पर यह भाव था, ये अभी बच्चे हैं कुछ नहीं कर सकते, किंतु त्रिविक्रम महाराज के ऊपर उनका भरोसा था। ऐसे ऐसे सब देखे हैं हमने, और भी निकट से देखा है। जब पूज्यपाद बामन महाराज जी गुरु की सेवा के लिए क्या नहीं किया। यदि किसी को भजन करना है, गुरु के प्रति निष्ठा करना है, तो ऐसे ही निष्ठा की आवश्यकता है। ऐसी निष्ठा नहीं होने से भजन नहीं हो सकता है। इसलिए 60 वर्षों में उनके साथ रहने से तुम लोग कितना दिन रहा उनके साथ, बहुत कम, और निकट से नहीं गुरु के रूप में दूर से रहा, और हम मित्र की भांति उनके साथ में जीवन में घुल मिल करके उनके साथ में हम। इसलिए उन लोगों के समय संबंध में अपने गुरु महाराज जी के जीवन के चरित्र में मैंने कुछ कुछ लिखा है। जहां जहां गुरु महाराज जी प्रचार में जाते वहां पर त्रिविक्रम महाराज, मैं अथवा बामन महाराज, और पहले बामन महाराज और मैं जाता। मैं समझता था कि मैं दौड़ने में सेकंड कभी नहीं हुआ, बहुत तेज दौड़ने वाला, और बामन महाराज जी खूब चलते थे। किंतु जब गुरु महाराज जी मेदिनीपुर के मठ में जब चलते थे तो हम दोनों आदमी पिछड़ जाते थे, उनके साथ में नहीं चल पाते थे। उस समय मैं रसोई बनाता, बामन महाराज जी सब प्रकार से और दूसरी सेवाओं को करते। उस समय मैं बर्तन तक मलता था और उनके साथ में वक्तृता करते, मैं लिखता था, छायाचित्र दिखलाता था, सभी काम हम लोग करते। इसके बाद में फिर त्रिविक्रम, जब बामन महाराज जी को प्रेस का डिपार्टमेंट दे दिया गया, तो त्रिविक्रम महाराज जी जाते थे। बहुत से उन लोगों से हमने शिक्षाएं लाभ की है। ये दोनों हमारे शिक्षा गुरु हैं, इनके संबंध में जितना बतलाऊं मैं तो उनका ऋणी हूँ, मैं उनके ऋणी से मुक्त नहीं हूँ। अब शुरुआत जी खेत में कुछ बोले, एनी ट्रांसलेशन नीडेड? हाँ, इन वेरी शॉर्ट वो ट्रांसलेशन करेंगे।
বলল সচিন প্রভু এসছে
ওকাজ
মিনিদিদা আছে, এপাশে মিনিদিদা তো ওপাশে আছে,
মধু আছে।
How much affection he had for the feet of his Shish Guru, Sri Rupa Sanatana. Upon the disappearance of Sri Rupa Sanatana in Sunyayata Mahagosha, then he saw the whole Brahmana life empty. The mouth of Radhakund was like the mouth of a tigress to take his life, and go down and be like a hyena. Such a high degree of separation he had for the feet of Sri Rupa Sanatana. Why? Because such a high degree of love and affection he had for them. The Guru then said, I had the first chance, the first hand opportunity to see their Guru Seva, the service of Srila Bhagavan Maharaj and Srila Shukra Maharaj throughout one Guru Dev. How Srila Bhagavan Maharaj kept his life in the hands of the service of his spiritual master, and how Padma Guru Dev became indebted to that service. When Srila Bhagavan Maharaj's hand was caught in the pretty press, that time Srila Bhagavan Gurudev was weeping. So very rare that a spiritual master would weep for his disciple. So you can imagine how much he was captured by the seva of Srila Bhagavan. If there was any responsibility, any responsible service, then Srila Bhagavan Gurudev would call Srila Chirivamaj and give to him. But Srila Chirivamaj a little bit tried to avoid, but anyhow, finally he would take. But any responsible servant he took, and he always concluded it perfectly. That time maybe Padma Gurudev was thinking that Srila Gurudev and Srila Bhagavan Maharaj were children, therefore we shouldn't give them too much responsibility. Then once Srila Bhagavan Maharaj, what Guru Seva he did not perform for his Guru. He said, I saw firsthand for more than 60 years how their nature was, how they had missed their Guru. Even though he said, how long we have seen him for? 10 years, 15 years? And we have seen from a great distance in the eyes of the former Guru. The Guru said, I could not see from a distance because we were living close together like dear friends. And by their help also I compiled the Jivan Charitra, or the life and teachings of Srila Bhakti Prakyan Kesa Goswami Maharaj. When Srila Padma Gurudev went preaching, then first he used to take Srila Bhakti Maharaj. Then Gurudev said, when I came that time, I also went. Padma Gurudev would walk very fast and Srila Balan Maharaj also walk. Because when Srila Balan Guruji came to meet people, that time he would walk so fast, village to village, he could not keep up. Whereas the active form of services of cooking and writing, that time Srila Balan Maharaj would perform other personal services like washing cloth and washing pots. But when Srila Balan Guruji put Srila Balan Maharaj in charge of the press department, that time Srila Chudaka Maharaj took his place and also went preaching everywhere with him. The Buddha said, I received so many teachings from them, so much shiksha. I cannot repay them. I am deeply indebted to them. Lord Prayamananda.
नवदीप धाम परिक्रमा के समय में हजारों लोगों की भीड़ होती है। गुरु महाराज से भेंट करने के लिए सब लोग आ जाते और सभी लोग उनको भेंट करके बैठे रहते, बातचीत करते, और बामन महाराज जी कागज कलम लेकर के उनके पास में उपस्थित होते। उतर ये आप संपादकीय कुछ बोल दीजिए, नहीं तो गौड़ीय पत्रिका छपेगी नहीं, फिर नृसिंहदेव को नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ में गुरु महाराज जी को अच्छा तो कलम पकड़ो और बस कोई किताब देखने की जरूरत कुछ नहीं, घर घर बोलते चले गए और बामन महाराज जी लिखे लिखने लगे। गुरु महाराज जी को भी पुस्तक की जरूरत है और बामन महाराज जो लिखते हैं उसमें करेक्शन की जरूरत है, कोई करेक्शन नहीं। बस हम लोग लिखते हैं तो करेक्शन करना पड़ता है, उनके लिखावट में कोई करेक्शन नहीं था और वो सवेरे तैयार होकर के नृसिंह जी के चरणों में दिया जाता है। एक प्रकार से हमने देखा है ऐसे परिक्रमा थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स वेर देयर एंड दे वर टॉकिंग विद गुरु महाराज एंड बामन महाराज केम and told that I want a editorial note. The Guru Maharaj told, oh, you should write. And he used to dictate as much. And in a few minutes he used to write about four pages. And then Bhaman Maharaj so corrected language that it had nothing to correct. And it was given to priest and second day it was published.
भक्ति प्रचार में श्रीमद भक्ति जनांत
আমাদের প্রত্যেকের নিকট
শ্রী হরি গুরু বৈষ্ণবের যে বিরহ মরণ মহোৎসব তাকে কেন্দ্র করে একাবতার আমরা গুরু বৈষ্ণবের অতিমত্ত প্রাকৃতিকাগুলির বিভিন্ন আসারণ শ্রী শ্রী সাধু সজ্জন শ্রীমুখে শ্রবণের সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করায় নিজেদেরকে সন্ন্যাদিগত মনে করি। গুরুমহারাজের অপ্রাকৃত বিমন্ত চিন্তাগুলি বিশ্লেষণ করার মতো সামর্থ্য বা যোগ্যতা মাতৃ শহরের নাই, তা সত্ত্বেও পরম পূজ্যবাসী মহারাজের অভিবৃদ্ধি এবং অনন্ত দয়ার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে কিছু স্মরণ বাক্য পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের শক্তি সামর্থ্য তিনি নিজ গুণে আমাদের প্রতি যে বর্ষণ করছেন এর জন্য পরিদান আমি আখ্যাত করা উচিত। একাবতকাল আপনারা বহুভাবে নানান দিগদর্শনের মাধ্যমে শ্রী গুরু মহারাজের অতিমত্ত চরিতাবলী আশ্বাদনে ব্রতী হতে পেরেছিলেন। বলছেন অনন্ত যেমন শাস্ত্র তেমনি ভগবত ভক্তি তথা ভক্তের চরিতাবলীও অখিল এবং অনন্তময়। যতই বিশ্লেষণে আনন্দ যাক না কেন তার কখনো পরিসমাপ্তি আসে না। সে কারণ সারাৎসা অর্থাৎ আদি মধ্য অন্তে যে সর্বত্র গিয়েতে হরি যেমন বলা আছে তত সামান্য ছোট্ট একটি দুটি ঘটনার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার যে প্রয়াস তার জন্য আমি প্রতি কথায় আছে মর্নিং সংস্থাকে সকাল দেখলেই বোঝা যায় দিনটি কেমন যাবে। ততদ্রুপ অতি প্রত্যুষে বা বাল্যকালে অসমের রূপাত্মের দিগদর্শনের বহু প্রতিভার সন্ধান আমরা পেয়েছি। আপনারা ইতিপূর্বেই শ্রবণ করেছেন পুরাণ দিনে যে খাতা পায়খানা আদি তাকে কেন্দ্র করে বহু সেবা সান্নিধ্যের মাধ্যমে গুরু মহারাজ তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আপনারা শিখেন তো কবিধামে প্রতাপপুত্র রাজা সম্বন্ধে একটি কথা নিশ্চয়ই শ্রবণের সুযোগ পেয়েছেন, উত্তম ভূমিকা করে নিজের সেবন অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন। বাল্য অবস্থায় বাচ্চা শিশু তিনি খাটা পায়খানার মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য সেই পায়খানার কামনা থেকে পায়খানাগুলিকে বের করে আনতেন। বিনা দ্বিধা অর্থাৎ দ্বিধাও চিকিৎসা কোনোরকম কিন্তু কান্ত না করে তিনি অতি প্রত্যুষে এই যে সেবা সৌষ্ঠবতার পরিচয় দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রী গৌড়ীয় বেদান্ত স্বামীজির তোরণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরে অষ্টদীয় পরম গুরুদেবের নির্দেশনায় একটি কথা তখন শুনতে পাওয়া যায় যে কি করা যায় এই তোরণের নির্দেশনায়। তখন গুরুপাত্রদের অর্থাৎ তদানন্দ গৌড়ীয় অভিনাম নামে খ্যাত অষ্টমী গুরুপাত্র তিনি বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন যে তরুণে যে সাক্ষী এবং সত্য স্বরূপ সেটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সেই জন্য জয় নবদ্বীপ নব প্রদীপ প্রভাব প্রাসঙ্গ গজৈব সিংহ স্বান সংঘাত সূত্রধারী চৈতন্য চন্দ্র ভগবান মুরারী। সময়ের অভাব বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না, আপনারা পরবর্তীকালে এগুলি বিশেষভাবে শ্রবণের সুযোগ সৌভাগ্য পাবেন। কারণ পরম গুরুদেবের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য গৌড়ীয় অভিধান নামে যিনি খ্যাত অর্থাৎ শ্রীরূপের নয়নমণি তাহার বিনোদ তুমি তার নিষ্ঠ পারিষদ পরিপদ এই কথা জানিয়ে গুরু বৈষ্ণবের চরণে কোনো কোনো বাক্য পুষ্পাঞ্জলি এবং শ্রদ্ধা কবিগ্রন্থে তিনি
জরা জোর সে বলো
भगवान श्री राम ने धनुष उठाया होगा और सीता जी को जो हृदय में हो रहा होगा उसकी अनुभूति कभी कोई कभी वर्णन करवाया होगा या भगवान श्याम सुंदर जब राधा जी से विभिन्न वेश बदल बदल कर मिलने जाते रहे होंगे और जब श्याम सुंदर का प्रकाश होने पर उनको जो मिलन की अनुभूति होती होगी उसका वर्णन भी कोई नहीं कर पाया होगा। ऐसा ही मेरा और ओम विष्णुपाद अष्टदशक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री मानव गोस्वामी महाराज का संबंध था। मैं कभी भी उनको नित्य लीला प्रविष्ट नहीं कह सकती, वो मेरे हृदय में मेरा जीवन ही वो है, मेरे प्राण को मेरी सांस है। फिर भी मैं जन्म जन्म से इतनी कपट हूँ, इतना मेरा आचरण गलत रहा होगा कि मैं अभी तक जीवित हूँ। श्री गुरुदेव मेरे दीक्षा गुरु तिरंगी स्वामी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने जब मुझे अपने लाभ प्यार से पाल पूछ कर बड़ा किया तो जैसे परिवार के एक बच्चे को उसके पिता चाचा था वो सब स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही मुझे पूज्य पाठ श्री वामन गोस्वामी महाराज और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने स्वीकार कर लिया। मैंने कभी इन तीनों को अलग देखा नहीं, जो कुछ भी गुरुदेव के मन में भावना आती थी मैंने वही सब कुछ श्री वामन गोस्वामी महाराज के हृदय में देखा। आज शिवन महाराज बहुत पुरानी बातें कह रहे थे तो मुझे भी याद आ रहा था कि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उस समय मठ में स्त्रियों का प्रवेश संभव नहीं था। मुझे प्रारंभ समय में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शुभानंद प्रभु और नवी प्रभु सुधन्य प्रभु इत्यादि ने शिवपाद वामन गोस्वामी महाराज से मेरा परिचय कराया कि महाराज ये यहाँ पे भागवत में रिसर्च कर रही है तो उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई और शिवानंद प्रभु से कहा शिवानंद इसकी सहायता करना और आज शिवानंद प्रभु मेरी हर संभव सहायता करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें मेरा वर्चस्व ज्यादा प्रकट हो जाता है लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रकट हो जाता है कि गुरु की आखिर की कृपा कितना जीवन में प्रभाव डाल देती है। श्री वामन गोस्वामी महाराज करुणा की विपरीत मूर्ति थे। मैं जब नवनीत धाम में थी तो उनके शिष्यों ने मुझे आदेश दिया कि दीदी तुम होली पूर्णिमा के दिन धाम मनाना, गौर पूर्णिमा के भक्त दीक्षा संन्यास लेते हैं। मैं तो ठीक है को मिले हैं। श्री नारायण गोस्वामी महाराज से मुझे आज भी डर लगता है, लेकिन उनके साथ मैं बहुत बहुत संरक्षित और सुरक्षित पा गई थी। मैं अपना हृदय उनके साथ अभिव्यक्त कर सकती थी। जब वो जयपुर में ठहरे थे और मैं वहां पर गई तो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट करीब आधा घंटा उन्होंने मेरे ऊपर से अपनी नजर नहीं हटाई। कृपा दृष्टि का वर्षण करते रहे, मैं रोती रही। वहां पर जनार्दन महाराज खड़े थे, उन्होंने कहा कि इसको भागवत सुनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो जानती है, तो रिसर्च की है। कोई नहीं, जो भी सुनाओ। और आप मैं देख रही हूँ कि वही आदेश मेरे गुरु ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं गुरुदेव के संपर्क में भागवत की रिसर्च के कारण आई थी। और भागवत जिसको शिव और ब्रह्मा भी समझ नहीं पाते, मैं उसके लिए प्रयास कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनका आशीर्वाद है और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। इन सब बातों को कहने से मेरा वर्चस्व नहीं, उन लोगों की अहेतु की कृपा और निष्काम कृपा प्रकट हो रही है। मैं जब नवदीप धाम में उनके पास गई तो वहां पे बाकी ब्रह्मचारी खड़े थे और उनसे वो पूछ रहे थे बाकी नामना में कौन सी विभक्ति है, भेषज माने क्या हो जाए। वो भी उत्तर नहीं दे पाए। मैंने उनकी कृपा से उत्तर दिया तो बहुत खुश हो गए। और वो जिस तरह से देखते रहे, मेरी दृष्टि आग की चादर की तरह उनकी तरफ देख रही है और वो भी आज मुझे वैसे ही देख रहे हैं। मैं उनके बिना कैसे जीऊं मुझे पता नहीं है। हर एक गुरु तत्व और कृष्ण तत्व, उन दोनों को जब गुरु ही हमारे ये कहते हैं कि हम कैसे समझ पाए, वाणी स्तंभित हो जाती है, तो मेरे लिए कैसे संभव है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है, जब गुरु कृपा करते हैं तब कृष्ण कृपा मिलती है। और गुरुदेव जब अर्जुन और उद्धव को भगवान श्याम सुंदर शिक्षाएं दे रहे थे तो शायद वो शिक्षाएं अधूरी रह गई, तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में सुंदर पर आए और उन्हीं के दैव स्वरूप सौविलास स्वरूप श्री रूप गोस्वामी ने उन्हीं के भावों को प्रकाशित किया। और श्री रूप गोस्वामी के जो नयन है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उन्होंने गौरवाणी का प्रचार किया और उसी गौरवाणी से हम श्री और श्रीष दोनों का दर्शन कर सकते हैं। और मेरे तीनों ही गुरुदेव, तीनों ही प्रभु जी चरण, जिनको मैं सम्मान अभी है और प्रयोजन के रूप में कह सकती हूँ, मेरे पर कृपा वर्षण कर रहे हैं। श्रीमान त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज से भी मेरा अंतरंग संबंध था। वे बड़ी हंसी मजाक की बातें किया करते थे। एक दफे मोदी भवन में रात को बैठे थे, 8 बजे मुझे बुलवाया और बोले कि मैं बरसाने जा रहा हूँ, मेरे को छोटी अटैची चाहिए। तो मैं कहा महाराज इस समय रात को 8 बजे? बोले अभी तुम्हारी सोचने की बात है। तो मैं बाहर आई, सामने रामचंद्र प्रभु दिखाई दिए कि प्रभु जी ये बड़ा अजीब सा आदेश है, कैसे करूं क्या करूं। तो वहां पे एक दिल्ली वाले कोई खड़े थे, शायद गोकुल शेट्टी या क्या तो कोई, उन्होंने कहा कि मौका ना है अभी इसकी। अभी मैं गई और फिर वहां पर उनके अनुसार से छोटी अटैची लेकर आई। जब उनको दी तो वो ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई बच्चा कोई चीज को मिलने पर हंस जाता है। एक दफे वो मोदी भवन के बाहर बैठे थे और कोई असभ्य अभद्र व्यक्ति वहां बैठा था और हमारे गुरु वर्ग के ऊपर घूट पटांग बातें कर रहा था और कह रहा था भक्ति करके क्या होता है। तब एक सज्जन वहां पर आए और उन्होंने श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को एक नोटों की गड्डी दी। उन्होंने बड़े मजाक करते हुए कहा कि भक्ति करके जब ये होता है, नोटों को हिला के उन्होंने बताया। तो इस तरह की कई प्रकार की बातें वो लोग किया करते थे। श्री गुरु तत्व, श्री गुरु तत्व हृदय में अनुभूत होता है, उसे वाणी से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जैसे वेद पुराण उपनिषद भगवान ने प्रकट किए हैं, उसी प्रकार से भगवान गुरु वर्ग को इस संसार में भेजा करते हैं। गुरु में कृष्णत्व होता है और कृष्णत्व के बिना गुरु तत्व हो ही नहीं सकता। श्रीपाद वामन गोस्वामी महाराज से मेरे अनन्य अनन्य स्मरण जुड़े हुए हैं।
चुचुड़ा के सचिव बाबू सचिव प्रभु कुछ पुष्पांजलि अर्पित करें। जल्दी आसो शीघ्र।
রোজ বাজার হাট বাজার কাজকাম করে
এইভাবে প্রশংসা করতেন। আবার একদিন পূজ্য ভাত মামন ভরা নরহরি প্রভুর বাড়িতে এসে কিছুটা সুমিত্রাকে একটু ভালো বলতেন, প্রায় ও ওইখানে আসতেন, আমিও গেছি। তা আমার একটা খাতা আছে, খুব বড় একটা খাতা আছে, খুব বড়, ওর মধ্যে ওর মধ্যে অনেক কিছু সংগ্রহ করা আছে। আমি প্রথমে ওনার সঙ্গে ধন্যবাদ করে আমি বললাম, মহারাজ আমার একটা বড় সন্দেহ হচ্ছে, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না,
সাধক হইতে দূরে নিত।
দিতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব আরোগ্য নাই সকল ভাগীবতী হইতে সুরক্ষিত হন। আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকাই শিষ্য সেবকের লক্ষণ। তিন নম্বরে আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকা, গুরুদেবজি আদেশ করেন তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে পালন করতে হবে। চার নম্বরে বলছেন স্বতন্ত্রতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা সাধক ক্ষেত্রে সাধনা কামায়ন করে। গুরু বৈষ্ণব নিষ্ঠা, গুরু বৈষ্ণবে নিষ্ঠা ভক্তি থাকলে কোনদিনই অকল্যাণ হবে না। পাঁচ নম্বরে বলছেন সর্বত্র আনুগত্যের কথা আছে, সমস্ত শাস্ত্রে আনুগত্যের কথা আছে। যার যতটা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আবার বলবেন রাধারানী এই কৃষ্ণ বিহের বিরহে আগুলিকে বিচলিত করে। কেন মিলন আছে বলে বিরহ, বিরহ না করলে মিলনের উৎকর্ষ নয়। যেমন প্রেম যদি মন না থাকে প্রেমের উৎকর্ষ নয়, হ্যাঁ যেমন অন্ধকার না থাকলে আলোর উৎকর্ষ নয়। কাজে এইভাবে আমাদের বিশেষ এক সরল ভাষায় আমাদের এইভাবে বলছেন, কাজে মিলন হলে বিরহ, মিলন না হলে বিরহ নয়। সাত নম্বরে বলছেন নিয়মিতভাবে নাম সংখ্যা অবশ্যই পূর্ণ করিতে হইবে, বিবিধ সেবার মধ্যে থাকিলে সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। শ্রী হরি গুরু বৈষ্ণব সেবা বিহীন অবস্থা আমাদের কখনো কাম্য না। আট নম্বরে বলছেন শ্রী নাম করিতে করিতে শ্রী গৌর রাধারানী বিহারীকে স্মরণ করিতে হইবে, পরিণাম করতে হবে, পরিণামকে হাতে নিয়ে পরিণামের মারা হাতে নিয়ে যদি জাগতিক কথা হয় অপরাধ হয়। তাহলেই আমাদের এক বৈষ্ণব তিনি বলতেন হাতে হরিনাম করছে আর এই বাগানে এসেছে গরু, এই সমস্ত গাছ গাছ গরু তারা গরু তারা গরু তারা গরু তারা গরু তারা গাছ গাছটা খেলো গাছ গাছটা খেলো হরিনাম হবে। উনি বলতেন নাম সংখ্যা একটু কম যদি হয় তবে বিশ্বাস সহকারে হ্যাঁ রাধা মিনার বিহারী কে স্মরণ করতে করতে হরিনাম করতে হবে। এইসব উপদেশা বলি আমি মাসিক পত্রিকাকে তুলে রেখেছি, পত্রিকায় কোথায় থাকবে তার দেখছিলেন। এইরকম ধরা ওনাদের শিক্ষা। তাছাড়া ওনার সঙ্গে একবার আমি গেছিলাম প্রসারে ঠাকুর নগর আনন্দ করায় আমাদের রানী দিদির বাড়ি, অনেক দিন পুত্রের কথা, উনি ঘরের মধ্যে আসেন বসে আমরা বাইরে কীর্তন করছি। একখানা কীর্তন আমি করলাম, আমাদের অবশ্য দেখছে না একটু মহাশয় বলা করে জ্ঞান দশের পর তো মানে এই কীর্তনখানা শুনে তারপরে আমাকে ডেকে বললেন কীর্তনখানা খুব ভালো, আমার খুব ভালো লাগলো। যাই হোক আপনারা যদি কৃপা করেন আমি কীর্তনখানা এখন একটু অল্পের মধ্যে করে আনি।
কালকে না পরশু বলবেন,
আগামী
বেশ সুন্দর কথা বললেন। শিলিগুড়ির
মিনু মিনু মিনু
মিনু মিনু দাসী কিছু পূজ্যপাদ বামন মহারাজের চরণে তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত করবে। উমা বলবে না, তোমাকে তো বলতেই হবে, বলতেই হবে এখনই দরকার। Yeah, though. মিনু বলতে পারে আর তুমি বলতে পারো,
তাহলে
বুঝবে তোমার গুরু শক্তি বাংলাতেই বলে ওইখান থেকে বলো মুখের কাছে, ঠিক মুখের কাছে নিয়ে যা মাইক,
মাইকটা সামনে
চলে যাওয়ার পরে আমার গুরু ভাই সব বন জঙ্গলে ঘুরছে, মহারাজ তাদের কৃপা করে আশ্রয় দিয়েছেন, মহারাজকে একটা গুরু ভাই দেখতে এসেছেন,
সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সব এদিকে ছত্রভঙ্গ
বন জঙ্গল
সব আছে, যারা আছে কম সে কম মহারাজের আশ্রয় আমি তাদের দেখবার জন্য,
মহারাজের আশ্রয় দিয়ে তাদেরকে দেখতে,
ভালো কথা বেশ ভালো কথা বলেছে। আজকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা
পূজ্যপাদ বামন মহারাজ আর পূজ্যপাদ বিকম মহারাজের সম্বন্ধে যে রকম হয় তাহার জীবন চরিত্রে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে দিয়ে বলছে এখানে গৌড়ী বেদান্ত সমিতিতে এই সব কিছুই হবে না, আমি পূর্ণরূপে জানি পূর্ণরূপে। ওখানে পূজ্যপাদ বামন মহারাজ দৃঢ়তিথি মানাবে কিনা আমার সন্দেহ। এখন বর্তমান আচার্য পর্যটক মহারাজ নিজে ব্যাস পূজা ওখানে তে করাবে, কিন্তু বামন মহারাজ এই সব কিছু কোনো কিছুই করবে আমার জানা আছে। আর বিশেষ করে পূজ্যপাদ বামন মহারাজের শিষ্যগণে যেরকম হয় আমি প্রীতি করি, ওখানে প্রীতি করবার কোনো লোকই নাই, একেবারে কোনো লোকই নাই। এই জন্য ক্রমে ক্রমে ওখানকার পূজ্যপাদ বামন মহারাজের শিষ্যরা আমার নিকটে ক্রমে ক্রমে আসছে। আজকে আমি খুব আনন্দ যে শিলিগুড়ি থেকে যেরকম ভাবে সম্মান করা হয়, তাহাদেরকে আদর করা হয় গৌড় বেদান্ত সমিতি তাহাকে উপেক্ষা করে, বলকি মন্দির থেকে তাহার গুরু পরম্পরা থেকে ফটোটাই সরিয়ে দেয় এমন। এই জন্য তারা পূজ্যপাদ বামন মহারাজের প্রধানতা দিবে না, চাইবে সে গুরু পরম্পরার মধ্যে সে গুরু মহারাজের পরে আসবে। আমার পরম্পরা ঠিক আছে, গুরু মহারাজ বামন মহারাজ তারপরে আমাদের পরম্পরা, এইরকম পরম্পরা থাকবে সারা বিশ্বের নিকটেতে। গুরু মহারাজের পূজ্যপাদ বামন মহারাজের চিত্র সব আমার ভক্তদের ঘরেতে দেখতে পাবে, এমন বিশ্বেতে কোনো আমার ভক্ত নাই যার বাড়িতে পূজ্যপাদ বামন মহারাজের চিত্র দেখবে। পর্যটক মহারাজের শিষ্যের নিকট কারো কাছে বামন মহারাজের একটা চিত্র পাওয়া যায়। আমার এখানেতে যেরকম কথা আলোচনা হচ্ছে, হরিকথা হচ্ছে, ওখানে বর্তমানে সব চৌপট হয়ে গেছে। যা হোক, তোমরা এইরকম হয় গুরু আর বৈষ্ণব, গুরু আর শিক্ষা গুরুকে অভিন্ন জ্ঞান করে দিয়ে ভজন পথেতে অগ্রসর হোক। আর আমি দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন যে আমার এখানে যারা আছে তারা সেই রকম হতে আচরণ করে, ভক্তি রাজ্যেতে অগ্রসর হচ্ছে, আমি তাতে খুব প্রসন্ন। আমি আমাদের নদী পরিক্রমা করে শিলিগুড়ি যাব, ওখানকার সব ভক্তরা তোমার নিবেদন করছে যে আপনি আসুন। আমরা সব দল বলে ওখানেতে 40-50 জন বৈষ্ণব ওখানে যাব আর 5-6 দিন প্রচার করে দান করে। গৌহাটিতে শিলংয়েতে আমাদের লোক ডাকছে, কিন্তু সময় হচ্ছে না, দুর্গম রাস্তা শিলংয়ে, ওখানে যাওয়া তবে তোমাদেরকে ওখানেতে পাঠাবো। এরপরে উমা দেবী, উমা কিছু বলবে, তুমি বলে যে আমি কিছু জানি। বাল্যকাল সে হরিনাম লেকর নিষ্ঠা কে সাথ মে মথুরা মে হমারে পাশ মে রহ করকে ভজন ইয়ে হমারে পাশ মে রহতি হ্যায় তো উনকে শিষ্য কুছ লোগ উল্টা সিধা করতে হ্যায় যে গুরুজি কো ছোড় করকে মহারাজ কে পাশ মে রহতি হ্যায়, ইসকো অনাদর করতে হ্যায়। আর বামন মহারাজ ইসকো বহুত হি অন্ত তক বহুত প্রীতি করতে হ্যায়।
গুরু ভাই বলতেন উমা মা, হ্যাঁ উমা মা একবার
ছেলে। হ্যাঁ
বাংলা বাংলা
যতক্ষণ না মিলন হচ্ছে বিরহ হয় না বৈশিষ্ট্য আমি
ভক্তি বেদান্ত দামোদর মহারাজ উইল স্পিক অ্যাবাউট পরম পূজ্যপাদ বিক্রম মহারাজ হি হ্যাজ সার্ভড ইন দি লাস্ট টাইম অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি ডিয়ার টু মহারাজ
So first of all, I would like to thank the Lord Spirit, Sikurudev, Vishnu Maharaj, Sikhsimata, Bhagavad, and the Sangharaj, and Sikhsikurus, Nishigala Puris, Sikhavakirad, Shikamaraj, Nishigala Puris, Sikhavakirad, Bhagavad, and Sangharaj, Nishigala Puris, Sikhavakirad, and the Sangharaj. So, scripture has described five types of Guru. One is Bhaktivaraj Guru, who brings us in alignment with Sikhavakirad. One is Diksha Guru, who initiates us into the fraternity of worship of Gauranga, Gandhara, Kirinari. That is Sri Diksha Guru. There is Bhajan Guru, Shyama Guru, and Shiksha Guru. So scripture has described Diksha Guru as a manifestation of Krishna Guru. Shiksha Guru Dhajari, Krishna Dasaru, Anta Jamani, Bhakta Shresh, Iriru. And Shiksha Guru was a manifestation of Krishna Sarup. Therefore, even though there is no difference between the Rup and the Sarup of Bhagavan, still there is some speciality. In the same way, there is no difference between Diksha and Shiksha Guru, but still there is some speciality. Because towards the Diksha Guru, there always must be some marjada, feelings of all reverence. But towards Shiksha Guru, those feelings of all reverence are not present. Therefore today I want to speak a little bit about Srila Chaitanya Maharaj. Of course, Srila Balan Maharaj, Gurudev also took me and Srila Sajan, Shripad Sajan Maharaj, so we also like took some nyas from him also in one way. So many devotees have spoken about him. His mercy is always upon us. But giving pranam to that, I want to speak a little bit about Srila Chaitanya Maharaj. So he was born in a very high Brahmin family. So his parents were very strict Vaishnavas. They said without worshipping Shalagram, even they would not drink one glass of water. So Prabhupada Maharaj in his Purva Ashram, his previous ashram, his name was Radha Das. So Gurudev gave me that Brahmachari name also, Radha Brahmachari. So one time Maharaj asked, what's your name? I said, Radha Das. He said, my name also was Radha Das. So I said, does that mean when I become big, I can become like you? So Maharaj was very expert in astrology, expert in mathematics, expert in Sanskrit. He was a first class homeopathic doctor. He used to say, "Oh, you know, I'm coming from Parikrama, I have to do my seva," because all the devotees would always become sick, and Maharaj would always, every afternoon, he would give all the devotees different types of medicine. So one time Srila Maharaj used to say to me, "You know my main seva? My main seva is thinking. I have to think for the whole Vedanta Samiti, because in Vedanta Samiti no one is thinking. Therefore, I have to think for the whole Vedanta Samiti." So one thing I especially noticed about Srila Maharaj, even though Vaishnava is most exalted, still they always consider themselves to be the most insignificant. And we have the complete opposite. Even though we really are insignificant, we consider ourselves to be the topmost. There was Srila Maharaj, even though he was, I cannot really at all comment on Srila Maharaj's bhajan or his internal life, because he always kept himself very, very covered. In fact, it appears that Maharaj used to act in such a way that everyone would think that he was completely opposed to like intimate topics and the service of Radha Krishna. Therefore, he was always very strict. There was very wonderful when Gurudev and Sri Chirga Maharaj would come on Parikram and they would discuss so many things. So even though Sri Chirga Maharaj always used to appear to be very disinterested in Gurudev's Harikatham, in fact, we knew how high Gurudev would speak and how nice was Gurudev's Harikatha, that much Srila Chirga Maharaj would appear to fall asleep. That much he was disinterested. So especially Srila Chirga Maharaj was responsible for the high class of Harikatha we used to hear on Parikram. I remember one time in Navadvip, then Pujapad Guruji, Srila Bhavan Maharaj, Srila Chirga Maharaj were sitting together. Then Srila Bhavan Maharaj, he gave Srila Chirga Maharaj the mic to speak the first day of Parikram. Then Sri Chirga Maharaj said, "I have one question. If Radharani is the topmost, then why Krishna leaves her and goes to Chandrami?" And that was the end of Chirga Maharaj's Harikatha. No more. And I remember Srila Bhavan Maharaj was, when Gurudev spoke 7 days of Radhasattva. So Srila Chirga Maharaj had not been there, no Radhasattva. Therefore Maharaj always knew how to pinch Gurudev to extract the juice. Therefore he would always take the side of Krishna. And Guruji would always take the side of Srimati Radhika. Then especially we used to go to the top of Vashana. There is one, what is it called, scale. One Brahmin, he wanted to marry his daughter. Therefore he prayed to Srimati Krishna, "Please give me some wealth." Then Sri Krishna said, "My only wealth is Srimati Radhika," and he gave that to the Brahman. Then Sri Chirga Maharaj said, "This is proof that Brahmanas have no regard for Srimati Radhika, because many of us hold a Brahman family." Then Sri Chirga Maharaj's whole head was falling out. Then the Buddha said, "And you will not understand Radhasattva until you become 80 years old or more, because of your wealth." They were very wonderful Harikatha used to be. And even though of course it was all joking, then I saw sometimes really us. And not all brahmacharis used to think Srila Maharaj was like a big brother, because he would very intimately would talk and we could reveal our hearts to him very nicely. And Maharaj always gave the perfect advice. Then I'm hearing from Srila Gurudev, what is the responsibility of Shiksha Guru? These days we see so many Shiksha Gurus taking all disciples for themselves. But the real job of the Shiksha Guru is to take the disciple and place on the feet of Diksha Guru. Then I remember Before Guru Dev used to chastise me so much, but now he's stopped that. Thank God. My mind sometimes used to become very disturbed. Then so I would often go to Sri Chaitanya Maharaj and complain. Then Sri Chaitanya Maharaj, from the beginning to the end, only one advice. Always follow the instructions of the Divine Master. Because Sri Chaitanya Maharaj never gave any other instruction. Never, even though he was such an exalted person, still, he took a vow, I will never accept any disciples. One time I asked Maharaj, you're not accepting disciples. He said, I don't have to accept any disciples. He goes, all the Ramana's disciples, they are all my disciples. So I don't have to hear any disciples. But then one time I asked him, Maharaj, you are not giving disciples. Then Maharaj said, even though I heard Sri Param Guruji wanted to make him acharya, wanted to make Sri Gurudev acharya, then all were declining. We will not accept. I am not qualified, you should give to Srila Bhagavaraj. Srila Bhagavaraj said, I am not qualified, you should give to Srila Bhagavaraj. Therefore, none of them wanted any position. Therefore, Vedanta Smriti for 50 years went very peacefully because there was no fighting. But as soon as Srila Chikramaraj left, that next governing, then all the snakes that lifted their head, because if Srila Chikramaraj was there, they could never say anything against Srila Gurudev. But Srila Chikramaraj left and Srila Bhagavaraj absorbed in his own bhajan, then they took the Vedanta Smriti from Srila Gurudev. Anyway, so I'm a little bit tell about my one or two stories I want to tell. Very, very instructive. It said one time I had good fortune whenever we would go to another week, then I would always stay in Srila Maharaj's room. So one time there was no room, and I said, Maharaj, where will I sleep? And he went to his bed. You can sleep here with me. One time one Babaji came into his room. Then he was from Gaudiamath, but he a little different type of fellow. Then he somehow snuck into Srila Maharaj's room and was sleeping there. That time Srila Chikramaraj showed up as Radhakanta.
Radhakanta!
Maharaj would always call. Then Srila Maharaj was chastising me, why are you putting him in my room? And I was thinking, why Maharaj is upset? Then this Babaji, all night he would chant. I know, because I was trying to sleep. And all night he was chanting. And he would never eat anything, only some fruits. And then I started thinking, maybe this devotee like Paramahamsa, because not sleeping, not eating, always chanting. So I was developing like some faith, some respect in him, thought he must be like a Paramahamsa. Then one time Srila Maharaj called me over. He said, you know that Babaji, he is Sahaja. He has left the feet of his Gurudev. He went to Radhakunda and took that Siddha Pranali. But the pure name is not coming because when he chants, he sleeps. Therefore, he was acting in his Gurudev's Paramahamsa, but Srila Maharaj knew he was a complete pretender and an offender. That time I had some understanding. Maharaj, he sees everything. Who is doing what? Then he was Grihastha. But when he heard the teachings of Sri Narottama Dasguru, that is also Sri Gurudev's Vasu Pradaksh Guru, that on that preaching party when they collected Gurudev, then Srila Chikramaraj was on that preaching party. Then he said because Gurudev didn't know Bengali, then he was from Bihar, and Sri Narottama Dasguru, his mother language was Bengali, then English was in, the Katha was in English. And Srila Chikramaraj used to say, from that first time he knew, this Narayan Tiwari, he is different because he has so much interest in hearing Bhagavad Gita. So Srila Chikramaraj, after hearing his Hari Gita, then he left everything and came to the mat. One time I asked him about his previous Buddha ashram. Then Maharaj said, when I left my home, all were weeping. My mother was crying, my father, my brothers, my sisters, my wife, my children. All were weeping, but I never turned around. I never looked at them again. And he said, let the dead bury the dead. So he left everything and came to the mat. That time his wife was very dear to Srila Param Gurudev. She would come and weep and would wash his shoes with her cloth. And I heard someone said to Maharaj, oh, your wife is using very bad language against you. And he said, I'm also doing to her. So his wife came and said, if you do not accept me back, I will commit suicide. I will commit suicide by fire. Then Maharaj said, okay. If you have the kerosene, I have the matches. Are you ready?
You can pour on your head.
So he was very, very strict and ideal sannyasi. And we are like Kalibash. You are completely opposite. You are coming here to do parikram to enjoy. You have not come to serve. Then Maharaj abused him, and he left. Then that Sivachandra was very happy. He said, you know who that man was? No, Maharaj. He is a multi-millionaire. He said, because I do not need 1 rupee from him, I speak as he likes. Then he said, can Duran Maharaj be like that? So, for some reason, huh? So, okay, I don't want to get into too much trouble. I'll tell you one example. Sometimes you cannot understand Gurudev. Because Sambhajan is there, and the reason we serve Gurudev is we have taken mantra from him. But the reason we serve Shikshaguru, we have not taken mantra, but we are serving out of pure love. Therefore, sometimes we cannot understand Dikshaguru is Mahabharat, and we are like Kanishtha Adhikari. There were sometimes Gurudev might act or speak in such a way that we cannot understand. That's why we should take shelter of the Vaishnavas. Srila Gurudev always says, serve Guru under the guidance of the Vaishnavas, otherwise you cannot be successful. For example, I think, oh, I can do Gurudev's service better than Pujapad Madhama. Is it possible? Impossible. Then we should always do service to Guru under the guidance of the Vaishnavas, otherwise we only become proud, false ego. I want to tell one more story, and then I'll finish here. After parikram in Devananda Gaudiya Math, then Maharaj would go back to meet Radha Kutir in Gugli. That's another story. So Maharaj had many, many things, pressure cookers, blankets, spare hats, many fire walking sticks, umbrellas. And he said, I said, Maharaj, when you're leaving, he said, I am going tomorrow. How? By train. And I said, no, I will go by taxi. Then one devotee was asking, can I come with you? So I thought, this is not, I should not be selfish, okay. Then that devotee went to Gurudev and gave pranam. Then Gurudev said, where are you going? I'm going, Gurudev, where are you going? I'm going to Ramana to Pujapati Shukra Maharaj's Bhajan Kutya. Then Gurudev was very angry, shouting, call Ramana here. So that time that devotee, he was shaking, he said, Gurudev wants to see you, he is not happy. Then I was also began shaking. Then I went in the room, and Gurudev was, oh, you are so independent, you never do anything under my guidance. Maybe you should go somewhere else and take diksha at the end. Very strong words. And I was like shaking. I thought I would leave my body. Then I went to Srila Chandra Maharaj, and he saw me, I was completely white like a ghost and shaking. And Srila Maharaj laughed. He goes, oh, does that mean permission was not given? And I said, Maharaj, this is no joke. Gurudev said he would protect me. I could go anywhere else and take diksha from any other Gaudiya Math. Then Srila Chandra Maharaj began laughing. He said, don't worry. This is like Rukmini and Krishna. Krishna said to Rukmini, oh Rukmini, I'm not sure you should go somewhere else and marry. So Srila Maharaj just laughed. And he said, sure, let's go. So Srila said, when Gurudev was chastising me, I remember. And Gurudev was chastising, I said, Gurudev, I already gave my word, I promised. I can take my promise back. And Gurudev said, okay, you can go, but don't stay more than 5 minutes. So I went to Maharaj's Bhajan Kuti and we stayed there 3 days, I remember. Then Gurudev was coming to Chinchura, then Sri Chandra Maharaj last, he said, hey, let's go, 5 minutes is almost up. Last thing, that time, there was Chinchura Gaudiya Math. So something had happened with one brahmachari there, some disturbance, and I wanted to kick him out. So Srila Chandra Maharaj said, if you kick him out, then I will also go. And I said, okay, you also can go. So Maharaj moved out and was doing bhajan by himself. So I remember that last time we went there to Chinchura Gaudiya Math. Then Maharaj went in his room and he was collecting some old things full of shoes, junk, everything, books. Then Maharaj was collecting and he filled one this small bag. Then he turned to me and said, he's looking, when is the auspicious time to go? Because astrologically. Then he said to me, ancient Chiranjivaraman, I am here 60 years. Everything you hear, you see here, I built. 60 years I served this man, and now they are kicking me out. Then he laughed. Oh well. He said, the father dies and the sons enjoy. Let's go. So unattached. Devagurudev also so unattached. Devananda Gaudiamat, so many, 24 temples, so many brahmacharis. And Gurudev also walked out and knocked him. So, this is so many instruction for us. So, if I said anything, Gurudev is. But I'm most unfortunate. I am not remembering Maharaj very much. Even though he gave me so much affection that I'm not catching. If I pray the mercy of Gurudev and Vaishnavas, my heart can have a small place for them. Because Guru Vaishnava Rati Namoy Dharma, unless we have affection for Gurudev and the Vaishnavas, then Kiru Paseva Pare Muikulacha. How can a fallen person achieve the service of Gandharva Kirinari unless we, our heart has a small place for Gurudev and the Vaishnavas? Therefore, today we pray the feet of Sri Lama Maharaj and Sri Chivita Maharaj. They can always keep their merciful glance upon us, protect us from our own faults and anattas, and we may slowly, under the guidance of Gurudev, progress in our bhakti. Go pray one another.
পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ কোন সময় তাহার মাতা পিতা আসলে মঠে রূঢ়ভাবে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করতেন, প্রীতিপূর্বক তাহাদেরকে দণ্ডত প্রণাম করা অথবা এইসব করতেন। আমি বলি যে মহারাজ, যে হোক পিতা মাতা তো তাদের আদর করা উচিত, তো যে তুমি বুঝো না, আপনি বুঝেন না, এদের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ব্যবহার করি মাথা চড়ে যাবে, সবসময় আসবে আমার ভজন নিষ্ঠা সব নষ্ট করে দেবে, আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করবে, এই জন্য এরকম হয়ে রূঢ় হবে। তিনি অত্যন্ত বৈরাগ্যবান ছিলেন, এই পর্যন্ত একটা ফতুয়া মতন পড়ে আর কাপড় এই ঘটনার উপরে পর্যন্ত পড়ে, ভালো রান্না জানতেন, ফার্স্ট ক্লাস। চুচুড়োতে বার্ষিক উৎসব হলে নিজে থেকে রান্না লাগতেন, কেউ লাগতে দিন আর প্রবেশন করেন, ফার্স্ট ক্লাস রান্না জানতেন। এইরকম তার বহু গুণ ছিল। রঘুনাথ তুম কিছু বলেগা, জগন্নাথ জি হ্যাঁ, জগন্নাথ জি হ্যাঁ, वो चित्रंजन वाले हैं।
हरे कृष्णा। गुरुदेव टोल परम जगत त्रिविक्रम महाराज पहली बार स्पेरिटी सुकामी मोट ही नेवर ट्रीट देम वेरी नाइसली एंड वेरी इशू इज वेरी हार्श वर्ड। श्रील गुरुदेव जी केम अनहैप्पी एंड आस ओ महाराज व्हाट मे बी देयर योर पेरेंट्स व्हाई यू यूजिंग सो हार्श वर्ड फॉर देम। Then Pujatana, if you don't understand this fact, if I be loved, interact with them and use very nice word, behave very sweetly, then they come again and harass me, you take me back in Priya's village. If I use harsh word, they'll come very real, gradually then stop, will not come. The second one who they told that he was very renounced for his own use. Even sir, sleepless, sad only up to this much and told up to me, not more than that. And he was very expert cooker. And he is fond of very sweet taste of vegetable. When I know Pansala Pichura, he used to engage himself for cooking and I engage others for serving. By this way, he spent his life. One thing I have to tell about him. As before, we have no one in Calcutta. I used to come Mathura with Gurudev from Chichura. When I came first time to Chichura to come Mathura with Gurudev, at that time I came from village, we don't have a pressure cooker. And we cook rice, and when serving was going on, he told my name was Swaranda Prabhu. He told him, he can serve, okay. And then suddenly he told that after one serve, we have to hit the cooker. And why? My ear is in my wound. I feel like I don't know, I never know what is a cooker. The result of hitting the cooker, and it will not form the gas and it will not work properly. I think that no, you have to put twice. That is twice, and no, I have to put two very strong sound. And no, why my ear is in my wound? I don't know at all. My head is hitting too much, and think my cat. Who are you? I don't know, I think I'm very happy, I just walk and do not angry, angry. What are you doing? I'm a Chumamu told me this is a rule. Chumamu! That is other. That's it. Chumamu is not in anything. My dear, I am coming in.
और उनका शासन दिला मैं भक्त जी को समझने में असमर्थ था, मैं समझ नहीं पाता। गुरु जी कभी मथुरा में आते थे तो यहाँ माता की परिक्रमा करते थे, तो एक समय मतलब बरसाने में करते करते जब राधा गोविंद गोवर्धन और राधा कुंड करते हुए हम लोग जब जा रहे थे तो उस समय करीब 9 बज गया। उस समय राधा कुंड और वृंदावन के बीच में वो उतना गांव भी नहीं था, एक गांव था और अंधकार समस्या का आरती था। उस समय देखा उसको गाड़ी में तेल नहीं है और ड्राइवर कहने लगा कि क्या हुआ उससे, तेल नहीं है और गाड़ी नहीं जाएगा और यहाँ से करीब 7 मील गोवर्धन है और घर पे 7 मील। इतने में थोड़ा हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्या बात है भाई। तुरंत उधर से देखा क्या वो बालक आया और उनसे कहा बाबा क्या हो गया क्या हो गया। हाँ तो हम लोग कहने लगे देखिए ना गाड़ी में नहीं है, गाड़ी चलेगा कैसे, हम लोग जाना था मत है। तो मैं कोई बात नहीं बाबा थोड़े दूर में ही इच्छा है चलो हमारे साथ। वहाँ गए हम लोग गए पीछे पीछे थोड़े दिन में कोई आदमी गए हाँ दिन भर करके। ऐसे कहीं कभी विषम स्थिति में विपत्ति में उनके सहाय करने के लिए ऐसा लगा हम लोग अनुभव किए कि गुरु जी की साथ में थे, इसलिए हम लोग को ऐसा वो दो बालक रूप में आकर के और मदद की, नहीं तो हम लोग बड़ा ही विषम स्थिति में रहते गुरु जी नहीं जाते। तो उनके सहाय करने के लिए कभी भगवान की भी मदद करते हैं और तो मुख्योश हैं, उनकी भी कुछ चरित्र लीला है और मैं गुरु जी के चरणों में तो मैं शिक्षा गुरु महाराज के चरणों में अनंत ज्ञापन करता हूँ। वो मेरे सदैव ही कृपा करते रहे, मैं सब प्रकार से अर्जुन होने पर भी कृपा आए उनकी कृपा करते रहे, यही बोलकर के मैं अपना पत्र को समाप्त करता हूँ। विशेष बोलने का मुझे और नहीं है। हरे कृष्ण नमस्कार।
ऑस्ट्रेलियन मेलोडी कीर्तन महामंत्र और 7 बजे है तुम्हें बोलवा इच्छा छिल हेलो बोलो बोलो 5 मिनट मत से इसके गाड़ी जब दौड़ती है तो बीच में नहीं रुकती, इसके कंट्रोल से भी बाहर निकल जाए।
वो जो लड़की आपको दे रही है ना
हम लोग आज श्रीलाई महाराज का महामहोत्सव को हम लोग ने पालन किया है।
भुवनेश्वर मठ है ना,
देखो लग जाती है बात करने
करके
भुवनेश्वर के
लिए गुरु जी का प्रति उनका कितना प्रीति है उनको वाणी को द्वारा क्योंकि गुरु जी का नाम उनका आशीर्वाद उनका दर्शन उनका प्रीति को जो वर्णना नहीं कर पा रहे थे बोलते आंखों से आंसू बह जाता था इससे हमको पता चलता है वो गुरु जी कैसे और शिष्य कैसे और गुरु जी के साथ में शिष्य का इतने गंभीर संबंध है। हम दुनियादारी के लिए आंखों से आंसू बहा सकते हैं लेकिन गुरु जी के लिए आंखों का आंसू बहना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए गुरुपाद तत्व कहा करते थे कहते एक मठवा सेवा शिष्य का प्रति गुरु का जो संबंध है जब तक हम संसार समुद्र से हम पार नहीं हो जाएंगे तब तक गुरु जी पुनः पुनः हम लोगों को आके के अपना संकल्प द्वारा हम लोगों को आप भगवत चरण में पहुंचाने के लिए जो प्रचेषा करते हैं। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत है। अब लोग विभिन्न भक्तों का मुकाल से विभिन्न दृष्टिकोण से जैसे भगवान का चरित्र अनंत और अथाह है जितने सारे भक्त जिस दृष्टिकोण से बोल रहे थे उसमें ऐसे लग रहा था उनकी भगवान की कथा जैसे उनकी कथा भी अनंत और असीम उनकी कथा है। इसलिए उनका जीवन में बहुत कुछ अच्छे अच्छे शिक्षा है। अब लोगों ने श्रवण किया उन्हें तो सर्वप्रथम उन्होंने यह शिक्षा दिया उनको प्रभुपाद ने नाम रखा था सज्जन सेवक है। सज्जन सेवक का तात्पर्य है केवल सेवक नहीं जो सज्जन मतलब अच्छा सेवक है। आप लोगों ने श्रवण किया जैसे नारद जी की चरित्र उनका चरित्र कुछ कुछ बराबर लगता है। नारद जैसे व्यास देव जी को बताया व्यास देव जीवन में इतने भी बड़ा और इतना रसी इतने बड़े भक्ता कैसे बना केवल वैष्णव का कृपा से केवल वैष्णव का सेवा से ही है। इसलिए इनका जीवन भी संपूर्ण रूप में वैष्णव सेवा के द्वारा ही संपूर्ण जीवन बीता। इसलिए कभी वो मथुरा में आए थे वो अपना मुंह से बोल रहे थे कहते जितने सारे बच्चे मेरे साथ में पढ़ रहे थे भक्ति विनोद इंद्रशुद्ध में कहते कोई मेरे साथ में नहीं वो सब चले गए लेकिन मैं केवल अकेला ही टिका हुआ हूँ। तो वो बता रहे थे मैं अकेला टिक गया कैसे कहते इसलिए मैं टिक गया मैंने पढ़ाई को मुख्य मैंने नहीं रखा है मैंने सेवा को ही मुख्य रख करके स्कूल में जितना समय जाता था उतना समय पढ़ता था उसको बाद में आकर के किताब नहीं खोलता था उसको बाद में आकर के संपूर्ण वैष्णव सेवा में ही जीवन लगा देता था। इसलिए प्रभुपाद उन्होंने कभी कभी अपना हाथ में चना भी छिलका उतार करके प्रभुपाद दिया प्रभुपाद खाए उनका घर की सफाई करना वैष्णव का कपड़ा को साफ करना उनका प्लेट को देना उनको स्थान को परिष्कार करना उन्होंने संपूर्ण वैष्णव सेवा ही अपना जीवन में दिखाया। इसको तरह उन्होंने ये शिक्षा दिया अगर जीवन में अगर हम भी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं हम लोग को भक्ति कैसे मिलेगी केवल शास्त्र ग्रंथ पढ़ने पर ही भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सेवन मुख्य जीवा दो स्वयं स्फुर तत्व जो जितने गुरु वैष्णव का सेवा निष्कपट रूप में जो जितने गुरु वैष्णव का सेवा करेगा उसके हृदय में तत्व ज्ञान शास्त्र सिद्धांत वो अपनी आप स्फूर्ति प्राप्त होता है अपनी आप स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए हम भी अपना भक्तों के अंदर में देखते हैं हमारे तीर्थ महाराज वर महाराज माधव महाराज जितने सारे इनको जीवन देखो संपूर्ण सेवा ही का जीवन है प्रेमानंद पूरा ही सेवा ही है लेकिन इनको तो मतलब बात ही सारा दुनिया सुन रहे हैं। कारण क्या है कहते काले उन्होंने भगवान को सेवा को ही अपना जीवन सर्वस्व माना। इसलिए कहते हैं हाँ, बल हाँ, क्या श्लोक है हाँ, जाए भाई से ब्रिनुते तने लब्धा नया आत्मा प्रवचन
लत्रा न मेधया न बहुना श्रुतेना जमे वैसे वृणुते तन लब्धा तसे से आत्मा विवृत तनुसा के ये जो ब्रह्म ज्ञान ये जो भगवत ज्ञान भगवान का ज्ञान है। भगवान बोलते जब मैं इसको कृपा करके ये वस्तु देना चाहता हूँ तभी ये वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो वस्तु प्राप्त कैसे करेगा? कहते भगवान जब सेवा को द्वारा संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होकर के जब से देना चाहते हैं तब वो वस्तु को कोई ग्रहण कर सकता, अपना बुद्धि विद्या पांडित्य के द्वारा ये वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। ये बावन महाराज का जीवन ये संपूर्ण एक उज्ज्वल दृष्टांत है। इसलिए इन्होंने क्लास में फास्ट आते थे। एक बार इन्होंने स्कूल में पेपर दिया, पेपर अपनी क्लास में फास्ट आए। जब फास्ट आए जब प्रभुपाल के पास में प्रभुपाल के सज्जन सेवक को बुलाया, बुला करके बोला देखो तुम क्लास में फेल हो गए, क्लास में तुम फेल हो गए हो। तो उन्होंने बोले गुरुदेव मैं कभी आपको कृपा से कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तुम ये बात को कैसे बता रहे हो, मैं फेल नहीं हो सकता। फिर गुरु वैष्णव का कृपा है, गुरु वैष्णव को मैं सेवा करता हूँ दिन भर, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। फिर प्रभुपाद उनको बुला करके पीठ पर हाथ थप थपाए, कहते क्लास में तुमने फास्ट डाले। इसलिए उन्होंने वैष्णव सेवा गुरु सेवा को करा कितने तल्लीनता, अभी आप लोगों ने श्रवण किया इनको सेवा में, इनको गुरुदेव कितने संतुष्ट थे कभी उन्होंने बताए। कहते गौरी वेदांत समिति में जितने सारे सेवक है उनको सेवा को अगर एक तरफ रख दिया जाए, अगर ये बावन गोस्वामी महाराज का सेवक तो सेवा को एक तरफ रख दिया जाए तो पहला दिखाई पड़ेगा इनका ही भारी है। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया जब उनको प्रेस सेवा में लगा दिया तो उन्होंने कितने निष्ठा उनके ऊपर प्रेस प्रेस सेवा की। इसलिए इनका जीवन में, और जब एक दिन उनको गुरु महाराज गुरु जी ने कहा कि क्या प्रेस में दिन भर घुसे रहोगे और कोई सेवा नहीं प्रचार प्रचार करना नहीं पड़ेगा, तुमने संन्यास लिया तभी से उन्होंने निकले तो प्रचार करने के लिए संपूर्ण निकल गए। फिर तो प्रचार करेगा आप लोगों ने जितने सारे गांव में जा करके कैसे कैसे कठोर परिश्रम करके उन्होंने प्रचार किया। इसलिए उन्होंने तीन वृद्धन की काम की है, एक तो साधारण वृद्धन और एक बृहद वृद्धन की प्रेस की काम की और एक जीवंत वृद्धन गुरु की। संन्यास रूप में उन्होंने सर्वत्र प्रचार और प्रसार उन्होंने किया है। इसलिए इनका जीवन संपूर्ण सेवा में ही संपूर्ण अपना जीवन को उन्होंने लगा दिया। इसलिए कभी उनको कितना गुरु निष्ठा था, कभी गुरु जी ने कुछ भक्तों के सामने थे उनको प्रश्न किया, उनका प्रश्न था ये बताओ भगवान को हम कैसे सहज रूप में संतुष्ट कर सकते, जीवन में हमें भक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने अलग अलग किसी से भक्तों को पूछे, सब भक्तों ने भक्ति की तरह तरह का डेफिनेशन दिया। अन्याय विलास का सुनने हम ज्ञान करवा दिया अलाभ होता हूँ आनंद कुल्य के कृष्णानुशीलन भक्तवा किसने बोले साफ बराम भक्ति ईश्वरे अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता उन्होंने तरह तरह का। जब इनको उठाया कहते तुम बताओ जीवन में सबसे भक्ति पाने का सरल उपाय क्या है भगवान को संतुष्ट करने का। जब उनका चांस दिया गया तब उन्होंने खड़े होकर के उस श्लोक में याद नहीं आ रहे गुरु शिष्य सया जथा सर्व लाभार्थ से जिन भक्तों ने ये श्लोक को बता करके और उन्होंने बोला रहु कहीं न तपस्या न जाति न विजया न निर्वाह न कृतवा नहीं वो छंद सा ने वो जलागी बिना महत्व दौड़ते। फिर मैं इतना ही जानता हूँ गुरु जी को हम कैसे संतुष्ट करें भगवान को हम देखें। इसलिए हम साक्षात रूप में गुरु जी को हम देख रहे हैं। अगर हमारा सेवा को द्वारा गुरु जी अगर संतुष्ट हो गए समझ ली जानी चाहिए भगवान भक्ति सब कुछ जीवन में मिलेगा। वास्तव रूप में यही वास्तव सत्य है। इसलिए ये तीनों को जो तीन गौड़ीय वेदांत का जो मूल स्तंभ थे ये तीनों को तीन उदाहरण दिया करते थे गौड़ीय वेदांत समिति ने। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेश इनको तीन उदाहरण दिया। कहते ब्रह्मा जी को बताए, कहते ब्रह्मा जी बताए वेदांत बावन गोस्वामी महाराज ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करना। कहते महेश कौन है शंकर जी कौन है कहते त्रिविक्रम महाराज को शंकर जी का अवतार बताए। हम लोग ने श्रवण कर रहे थे कैसे उनका कठोर वाणी है और कैसे उन्होंने सारे अलग से खंडन करने वाले और उसी में जो विष्णु का जो उदाहरण दिया हमारे महाराज जी को ही इन्होंने विष्णु का ही स्थान पर दिया। कहते सृष्टि करना भी सहज है संहार करना भी सहज है लेकिन जो पालन का जो काम ये कोई साधारण बात नहीं पालन करना। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया कहते बाबू गोसाई महाराज बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन उसमें अपना शिष्य से वो केवल इसी दृष्टिकोण में देखते हैं जैसे चिल्ला जीव संघ के पास में नरक में श्यामान तो श्रीनिवास ये तीनों ने आके के जैसे इनके पास में लालित पालित हुए तब उसी तरह हमारे महाराज जी को पास में भी जितने सारे दूसरे दूसरे का शिष्य अक्सर करके महाराज के पास में देखो भक्तिवेदन बाबू गोसाई महाराज का शिष्य ही ज्यादा उनके पास में लालित पालित केवल नहीं मैं और भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज भक्तिवेदन बाबू गोसाई भक्तिवेदन दूसरे जितने सारे दूसरे दूसरे पट के शिष्य लोग महाराज को पास में आकर के सब के सब लालित पालित हो रहे हैं ठीक जो नारायण है इसलिए नारायण का मतलब क्या है कहते नर मतलब होता है जीव और अरण मतलब होता है आश्रय जहां पर सारे जीव जहां पर आश्रय लेते हैं नारायण नर मतलब होता है रस है और अरण मतलब होता है सारे रस का जो बुद्धिमान स्वरूप है वो नारायण है नर मतलब होता है ज्ञान है सारे ज्ञान का अरण मतलब आश्रय तो जितने सारे ज्ञान की जो संपूर्ण आश्रय है इसलिए गुरुदेव जी का जो नाम दिया है नाम और काम में सचमुच से के बराबर है नहीं तो संपूर्ण विश्व के दूसरे दूसरे का शिष्य हम लोग को ऐसे लगता है महाराज के पास जो लोग जाते हैं लगता है महाराज साहब सबको जितना प्रेम करते हैं उससे ज्यादा प्रेम हमें करते हैं इस सभी के हृदय में सारे एक दूसरे को पूछो महाराज के पास जो लोग आए लगता महाराज हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे ज्यादा प्रेम और किसको नहीं करते ये हमारे महाराज के अंदर विशेष गुण है इसलिए इनको जो सरकार इनको जो नारायण गुरु जो पालन करके ये जो काम दिया गया सचमुच सेवकों ने ये पालन को उन्होंने सही सही रूप में उन्होंने गुरु जी को जो नाम दिया नाम और इनका काम देखा इसलिए कभी कभी ये दोनों को इसको युधिष्ठ भक्ति हमारे एक को नित्यानंद प्रभु और इनको महाप्रभु का अभियान विधानसभा में दिया महाप्रभु को दान किया तो भक्ति विधानसभा अमर गोस्वामी महाराज और नित्यानंद प्रभु का काम हमारे महाराज को होता है ये दौरे विधानसभा के नित्यानंद है क्योंकि महाराज ने जीव का अपना चरण में आश्रय दे करके उनको एकदम शुद्ध बना करके महाराज को बाद में पहुंचा देते हैं इसलिए उन्होंने और इनका जो जीवन है जीवन में कभी कभी अद्भुत अद्भुत भी इनका जीवन में कुछ पता सुनने को मिलता है कहते कभी ये जगन्नाथपुरी में थे जगन्नाथपुरी में रहते समय वहां पर जो तोता गोपीनाथ उस समय तो गुरु जी की विग्रह स्थापन हो रहा था तो तोता गोपीनाथ कभी उनको स्वप्न दिया कहते मेरे को सेवक ये कपड़ा ठीक से नहीं पहनाया मैं फटा हुआ कपड़ा नहीं पहना तो बोलते हैं मैं बाजार में जा करके नया वस्त्र खरीद करके मैंने तोता गोपीनाथ मिल गए जा गए तो वहां पर पूजा ने बोला कि कपड़ा पहना करके हमको पुराना कपड़ा दो सचमुच से कपड़ा देगा तो उसमें फटा था कभी साक्षात ठाकुर जी स्वप्न दे करके कभी अगर चावल कभी जला हुआ चावल भोग लगा दिया तो फिर ठाकुर जी कभी उनको स्वप्न दिया फिर आप जला हुआ चावल भोग लगा रहे इसलिए और इनका कभी जो शिष्य वात्सल्यता है बहुत शिष्य वात्सल्यता मिलन जी बता रही थी ये तो बहुत सारे गृहस्थ भक्तों को ये धर्म प्रश्न करते थे तुम अपना मेरे को अपना पिता नहीं समझते हो आप मेरे अपना बच्चे नहीं है इसलिए मैं दूसरे घर में नहीं रहूंगा मैं तेरे घर में ही रहूंगा इसलिए उन्होंने बोले बोले गुरुदेव हमारा घर में शौच क्रिया के लिए सुविधा नहीं कहते कोई चिंता मत कर अपना पीछे बोरा हाँ बोरा लगा करके वहीं पर ठीक कर तो मैं वहीं पर शौच क्रिया करूंगा इसलिए दूसरे शिष्य घर में नहीं गए उसी शिष्य घर में रह गए इसलिए इनका अंदर में जो शिष्य वात्सल्यता और इनका अंदर में जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़ी आचार्य सहित वैष्णव तब ये तीन वस्तु की जातक प्रमाण है कहते कनक कनक मतलब पैसा है कहते ये कभी बैंक नहीं गए बोलते थे मेरा पकेट ही बैंक है इसमें जो कुछ है इसलिए जिस मठ में वो जाते थे जो प्रणाम उसको मिलता था फिर वहीं पर ठाकुर सेवा में दे करे तो वो चले जाते थे इसलिए कभी बैंक नहीं गए मतलब यही सब कुछ है क्योंकि उनको पता है अनन्य चिंत तमाम जे जना हा पर कृपा सके तैसा मिटा भी मिटता नाम जोगाश्रम भाव्यम इसलिए उनको पूर्ण विश्वास है इसलिए कर्णक कामिनी हर स्त्रियों को मां बोलकर संबोधन करते
था पूर्ण एक शुद्ध वैष्णव का जीवन है। हम लोग जहाँ नजदीक में रहते थे उनका सभी किस समय सोते थे किस समय जगते थे जो उनको सेवक पास में बात कर रहे लेकिन तब सोकर उठ दिया अपना भजन करके इसलिए देवी बताए दो तीन तीन लाख महीना करते थे उनको जो भजन का निष्ठा उनको जो हर चीज एक शुद्ध वैष्णव का संपूर्ण जीवन उनको दिखाई पड़ता था। इसलिए ऐसे महापुरुष दर्शन हम लोगों ने किया ये कोई साधारण बात नहीं इसलिए उनका चरणा से जिन लोगों ने किया बड़े सौभाग्यवान कम से कम एक से महाप्रभु धारा में हम तो भजन कर ही नहीं सकते हम तो अयोग्य है लेकिन ऐसे वैष्णव को हम लोगों ने दर्शन किया केवल साहित्य प्राप्त किया इसको ही हम अपना जीवन की धन्य धन्य हम समझते हैं। कोई ऐसे हम तो संगत कृपा करें
अंत में श्रीमान माधव महाराज जी ने प्रपूज्य चरण श्रीमद बामन महाराज जी के विरह तिथि के उपलक्ष में एक विरह पुष्पांजलि लिखा बहुत ही सुंदर है उसको स्वयं ही पढ़ करके सुनाए
जरा कीर्तन तो उड़ा कर ले भलो होता
বৈষ্ণবে সেবা দর্শে তুমি গুণী রূপাঙ্গ ধারতম জলসংখ ধার নবগণ गुरु जी का आरती नवती नववन में हो रहा है ये भक्त के मन इसके आरती देवता के रोहित और उनके प्रति रोहित हो रहा है। गुरु माई कैसे थे जैसे श्रीमद महाप्रभु ने बताया बिना कभी सुनी चेना तरह की सही सेना अमानिया मारो दे कीर्तनिया सदा हरी इन महाप्रभु के श्लोक के मूर्तिमान प्रतीक थे और दो ये अभिधान शिवा मन ज्योति उनका सुनना था श्री भक्तिरंग बामन প্রতিপাদন করার अपने आचरण करना ही उनका जीवन का आदर्श वही उनका आरती के लिए दीप क्या है वेदांत की वाणी उनके लिए दीप है। धूप के अगरबत्ती क्या है गौ वाणी श्रीमद महाप्रभु जो मैं बताया एक तो तात्विक विचार है असल का विचार है तात्विक विचार में श्री भक्ति ठाकुर ने बताया आशा प्रावत हरि में परम ये तात्विक विचार और रस विचार आराध भगवान परिशोधनय ये दोनों ही उनके आरती के लिए अगरबत्ती है। और वैष्णव सेवा दर्शे तुम्हें गुण खानी ये वैष्णव सेवा सीखना है उनसे ही सीखना पड़ेगा जैसे खान में बहुत सारा कुछ रहता है थोड़ा सा खाने पर उनको खान नहीं कहा जाएगा माई नहीं कहा जाएगा जब बहुत कुछ होगा तब भी उनको खान कहा जाएगा। वैष्णव सेवा इतने ही गुण हो सकता है सब उनमें मुक्ति मार्ग उनमें था। फिर आरती में हम लोग जलसंघ व्यवहार करते हैं जलसंघ क्या है रूपांग धारा और जलसंघ था रूपांग अर्थात स्वरूप से ही पा अपने सदा शरीर में रहने के संख्या पूर्व नाम दान की भी करते थे और अपने सीता शरीर में तांबला प्रसाद और मंडल मयो दाना की सारा दी ऐसे उनके चरित्र हम देखते हैं कि अभी श्री पशुपान रसम ने बताया कि ये सबके साथ रहते हुए भी अपने संख्या पूर्व नाम सब सब कुछ करते थे और अपने सीता शरीर में कैसे सबसे भक्त थे से जन, से ये पांडव के ज्वलंत प्रदीप है और सरस्वत केशव धारा आरती कुमार सरस्वत सरस्वत ठाकुर प्रभुपाद केशव केशव गोस्वामी महाराज उनके धारा में ही वो सब समय अपने जीवन का बैठे थे भजन के वही इनका धारा जो पांडव की धारा थी और प्रभुपाद की धारा थी वही इनकी धारा है और देखने में इतना सुंदर और सुंदर बहुत सुंदर था जैसे परमजी जी के बड़ा जुना बोलते थे ऐसे तुम्हारी अंशियम बहुत सुंदर था इसलिए बताया जामुना का हेमन इंद्रियम का सुंदर जगत ये सुना इसमें मिलावट आ सकता है जामुना जो है उसमें कोई मिलावट नहीं ऐसे उनका अमृत सुंदर था और इस समय दूसरा नहीं होते थे कुछ बोला तो मंद मुस्कान कर रहे थे जब विधु मंगल स्मित हास्य मुखर राजा सुंदर सो कभी कभी मृदंग बजाए आपके लिए मृदंग बजता है करता बजता है तो मृदंग कौन बजा रहे सुंदर अर्थात उनके जो सबसे पहला सेवक था सुंदरानंद प्रभु जो पहले गुरु जी का सेवक था फिर गुरु महाराज सेवा में असुविधा होने के कारण गुरु जी को गुरु महाराज के पास भेज दिया था सुबह था शुभानंद प्रभु जी का वर्तमान नाम सुप्रसिद्ध महाराज गोपिया का गोपीकांत प्रभु जी का नाम वर्तमान जनार्दन महाराज प्रेमकर प्रेमानंद प्रभु जो गोस्वामी आदर्श हरिजन पति गोविंद का अमर ढूंढा है हरिजन माता हरिजन महाराज पुत्र कमलापति प्रभु जो वर्तमान नाम जिनका वर्तमान नाम हरिजन महाराज गोविंद का गोविंद महाराज मधुबन के कृष्णदास गाय यादन भाई कृष्णदास जो कीर्तन करते हैं कि गुरु जी के साथ वो देश विदेश में परिभ्रमण भी किया है वो मधुबन हमें गुरु जी आरती कीर्तन कर रहे हैं और कृष्णदास का दूसरा आता है जिनका अभिमान दिए स्वरूपानंद कृष्णदास जिनका अभिमान है कृष्णदास हूँ वो मुझे कीर्तन कर रहे हैं और श्री चरण सेवा का नाम माधव शिव और कृष्ण सारे रखता है जिनके नाम के साथ कृष्ण शब्द जुड़ है जैसे कृष्ण कृपा अमर कृष्ण तमाम कृष्ण विजय कृष्ण ये सब श्री चरण सेवा का नाम माधव शिव उनके चरण सेवा को प्रार्थना कर रहे हैं माधव अर्थात माधव देव ब्रह्मचारी श्री अर्थात जो लोग भी ये शिष्य नहीं है लेकिन सिंसियर भक्त है उनके लिए शिष्य पर बन महाराज विशेष रूप में पदकर्ता माधव के बारे में कहा गया है
कल हमारे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्र श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का तिरुभाव है तिरुभाव तिथि टुमारो डे सेपरेशन डे ऑफ परम पूज्यपाद भाई शिक्षा गुरु श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज Tomorrow we will give Pushpanjali in his lotus feet.
Morning.
All his disciples and others can give. Oh,
Lord. Hare Krishna, so many devotees have requested for darshan. So day after tomorrow, 10 a.m. darshan will happen for Rasiyan devotee. So biggest group in our parikrama at this time, Rasiyan devotee. So Rasiyan devotee darshan will be day after tomorrow, 10 a.m. And some people have requested for initiation also. Initiation will take place 21st day. Dikha Mahayana Hode, Ekadashi Day, Ekustarike. Jo log Dikha Mahayana ke liye Uro Kande Unke Liye Kehra Hu, Ekistari, Ekadashi Day Dikha Hoga, Aur 22 Tarikh Ko Havan. Iske Baad Dikha Is Kaafi Mein Nahi Hoga. So day after tomorrow, Darshan for Asya Devotee, And we are not thinking that they are requesting also they can come by me, Hare Krishna. Okay. And after that, we will this darshan will happen on that day.
Tomorrow morning program and also in the evening. Tomorrow day, one day.